लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिलेक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, दिलेक्सित नोस का पांचवा अध्याय है प्रेम के बदले प्रेम। इस अध्याय में क्षतिपूर्ति का जिक्र करते हुए हमने कहा कि पश्चाताप से पैदा हुई एकजुटता की भावना मेल मिलाप को भी संभव बनाती है। जो व्यक्ति पश्चाताप करने में सक्षम है वह अपने भाइयों और बहनों की गलतियों पर क्रोध और गलानी महसूस करने के बजाय उनके पापों के लिए रोता है। क्षतिपूर्ति का एक दूसरा विकल्प हमारे लिए उपलब्ध है जो हमें हमारे भाइयों और बहनों के प्रति ठोस प्रतिबद्धता के पहलू का परित्याग किए बिना हमें मसीह के हृदय के साथ और भी अधिक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने को मदद करता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैंने किसी अन्य स्थान पर इस बात की सुझाव दी है, ईश्वर ने किस तरह से स्वयं को इस तरह सीमित करने का प्रयास किया है कि बहुत सारी चीजें जिन्हें हम बुराइयां या दुख का स्रोत मानते हैं वे वास्तव में प्रसव पीड़ा का हिस्सा है जिसका उपयोग वे हमें सृष्टिकर्ता के साथ सहयोग करने के लिए करते हैं। यह सहयोग हमारी ओर से ईश्वर की शक्ति और उनके प्रेम को हमारे जीवन और पूरी दुनिया में प्रसारित कर सकता है। वहीं इसकी अस्वीकृति या इसके प्रति उदासीनता इसमें बाधक बनती है। धर्म ग्रंथ के बहुत से पद इसे हमारे लिए विभिन्न तरह की उपमाओं में घोषित करते हैं जिसे स्वयं ईश्वर पुकार कर कहते हैं, यदि केवल तुम मेरी ओर लौट आओ हे इसराइल, या जब वे अपनी चुनी हुई प्रजा के द्वारा अस्वीकार किए जाने का अनुभव करते हैं वे कहते हैं मेरा हृदय भीतर ही भीतर सिकुड़ जाता है, मेरी करुणा उत्साह में कोमल हो जाती है। श्रोताओं, यद्यपि पुनर्जीवित ईश्वर की ओर से हमारे लिए नए दुख के बारे में कुछ कहना असंभव है, ख्रीस्त का पास का रहस्य और ख्रीस्त में सारी चीजें, वे सारी बातें जिन्हें उन्होंने सारी मानव जाति के लिए सहा, उनकी दिव्यता में शामिल होती है और इस प्रकार सभी समयों से परे हो जाती है जबकि उन सभी में वे उपस्थित रहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने पुनरुत्थान की अपनी विस्तृत महिमा को सीमित रहने दिया और अपने ज्वलंत प्रेम के विस्तार को सीमित किया जिससे वे हमें अपने हृदय के संग स्वतंत्र पूर्ण सहयोग हेतु एक स्थान दें। उनके प्रेम को हमारे द्वारा अस्वीकार किया जाना हमारे लिए उनके कीमती उपहार के मार्ग में एक रोड़ा उत्पन्न करता है, वहीं हमारा उसे स्वीकारना हमारे लिए एक स्थान तैयार करता है, एक मार्ग जहां हम इसे अपने हृदय में उडेला जाता हुआ पाते हैं। यदि वह मुझमें खुलापन और विश्वास नहीं पाता तो उसका प्रेम वंचित रह जाता है क्योंकि उसने स्वयं इसकी इच्छा की है मेरे जीवन में और इस संसार में जहां वह मुझे अपने में विस्तृत रूप में अद्वितीय और बेमिसाल ढंग से प्रस्तुत करने को निमंत्रण देते हैं। पुनः यह उनकी ओर से किसी कारण से नहीं बल्कि उनकी अनंत स्वतंत्रता में उत्पन्न होती है। यह हम में हर किसी के लिए उनके रहस्यात्मक और सर्वश्रेष्ठ प्रेम में होता है। जब ईश्वर की शक्ति मानवीय कमजोरी में प्रकट होती है तो केवल हम इसे अपने विश्वास में ही आत्मपरक कर सकते हैं। संत मेरी मार्गरेट क्रेस्ट के एक दर्शनों की चर्चा करते हुए कहती हैं कि मानव के लिए अपने हृदय में भरे उस प्रेम के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने उनसे कहा कि करुणा की धधकती ज्वाला को वे अपने हृदय में वहन नहीं करते हैं, वे उसे जरूरी रूप में प्रसारित करने की चाह रखते हैं, क्योंकि ईश्वर जो सारी चीजों को कर सकते हैं अपने दिव्य स्वतंत्रता में हमारी ओर से सहयोग की चाह रखते हैं। क्षतिपूर्ति को हम उन बाधाओं को हटाने के रूप में समझ सकते हैं जिसे हम दुनिया में मसीह के प्रेम के विस्तार के सामने अपने विश्वास, कृतज्ञता और आत्म बलिदान की कमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, इस रहस्य पर और अधिक गहराई से चिंतन करने में मदद हेतु हम पुनः यीशु की संत तेरेसा के ज्योतिर्मय आध्यात्मिकता की ओर अपने को अभिमुख कर सकते हैं। संत तेरेसा इस बात से सचेत थी कि उनके जीवन की कुछ परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति एक अति चरम स्वरूप विकसित हुआ था जो अपने को स्वाभाविक रूप में दूसरों के लिए बलिदान अर्पित करने की चाह पर आधारित था और इस भांति यह अपने को ईश्वर के दिव्य न्याय एवं चमकती छड़ी के समान बनाना था। उनके शब्दों में मैं उन आत्माओं के बारे में विचार करती हूँ जो अपने को ईश्वरीय न्याय के शिकार स्वरूप अर्पित करते हैं जिससे पापियों के लिए निर्धारित दंड दूर किए जा सके क्योंकि वे उन्हें अपने ऊपर लेते हैं। यद्यपि यह चढ़ावा अपने में कितना भी महान और उदारता भरी क्यों ना हो, उन्होंने इसमें बहुत आकर्षण नहीं पाया। मैंने इस चढ़ावे के प्रति अपनी अनुभूति को आकर्षित होता नहीं पाया। ईश्वर के न्याय पर इतना जोर देने से अंततः यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि मसीह का बलिदान अपने में किस तरह अधूरा था या केवल आंशिक रूप से प्रभावकारी था या उसकी दया पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थी। अपनी महान आध्यात्मिक विचारों के द्वारा संत तेरेसा ने इस बात की खोज की कि हम अपने को एक दूसरे रूप में अर्पित कर सकते हैं जहां ईश्वर के दिव्य न्याय को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम ईश्वर के दिव्य प्रेम को सहज ही प्रसारित होने दे सकते हैं। हे मेरे ईश्वर, क्या तेरा घृणित प्रेम तेरे हृदय के अंदर बंद रह सकता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आत्माएं अपने को तेरे प्रेम के शिकार स्वरूप होम बलि के रूप में अर्पित करती हैं, तो तू उन्हें शीघ्र ही स्वीकार करेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि तू अपने अंदर व्याप्त अनंत कोमल प्रेम भरी तरंगों को रोके बिना खुश होगा। श्रोताओं, हमें यीशु के मुक्तिदायी बलिदान में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जबकि यह हमारे लिए सत्य है कि स्वेच्छा से ख्रीस्त के हृदय के प्रति हमारी अस्वीकृति इस दुनिया में उनकी कोमलता के तरंगों को प्रसारित करने में अवरोध उत्पन्न करती है। यह इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। दिव्य न्याय से अधिक यह वह सच्चाई थी जहां संत तेरेसा इस बात का अनुभव करती हैं कि ईश्वर के प्रेम की अस्वीकृति उसके हृदय को विचलित करेगी क्योंकि संत तेरेसा के लिए ईश्वर के न्याय को सिर्फ उनके प्रेम की ज्योति में ही समझा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है, उसने ईश्वर की पूर्णता को उनकी करुणा में मनन चिंतन किया और इस प्रकार उन्हें प्रेम में रूपांतरित और प्रदीप्त पाया। उनके शब्दों में यहाँ तक कि उनका न्याय मुझे प्रेम से ढका प्रतीत होता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, प्रभु यीशु मेरे दिल जला है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने हे प्रभु तू ही वो है, धन्य हूँ तू मेरे घर आया घर आया, प्रभु यीशु मेरे दिल में
आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप की विश्वव्यापी प्रार्थना की प्रेरिताई में इस माह आपसे सहस्तित्व के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया गया है। हमेशा की तरह पोप ने अगस्त माह के लिए एक ऐसा विषय चुना है जो मानवता और कलीसिया के मिशन के लिए एक सामूहिक चुनौती प्रस्तुत करता है, वह है हमारे समाजों के भीतर संघर्ष। इसलिए वे विश्वासों से प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं, खासकर ऐसे समाजों के लिए जहां सहस्तित्व अधिक कठिन प्रतीत होता है, वहां जातीय राजनीतिक धार्मिक या वैचारिक कारणों से टकराव के प्रलोभन में न फंसे। जेसुइट संचार फाउंडेशन के सहयोग से तैयार वीडियो में पोप लियो चौदहवें अपने विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से अगस्त महीने में एक विशेष प्रार्थना का आह्वान करते हैं। उनके शब्दों के साथ आने वाली छवियां दुनिया में मौजूद विभाजनों को प्रस्तुत करती हैं, युद्ध टकराव और हिंसा जो विनाश के कारण हैं, लोगों को अपनी ही भूमि से भागने पर मजबूर करते हैं और अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं। हालांकि युवाओं के लिए आशा का संदेश है कि पोप के वीडियो को जारी करने के साथ ही युवाओं की जयंती मनाई जा रही है। वास्तव में बेहतर भविष्य की आशा इस बात पर निर्भर करती है कि युवा भाईचारे वाले समुदायों का निर्माण कैसे करें, एक दूसरे का और उनकी विविधताओं का स्वागत कैसे करें और अपने दिल खोलकर दूसरों की सेवा में खुद को कैसे लगाएं। खबरों पर नजर डालने से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अलावा राजनीतिक धार्मिक जातीय और अन्य प्रकार के मतभेदों के बढ़ने के कारण समुदायों के भीतर भी कई संघर्ष पैदा हो रहे हैं। इन घटनाओं के मूल में एक बुनियादी सच्चाई की अनदेखी हो रही है कि हम सभी भाई बहन हैं, एक ही पिता के संतान हैं। अतः पोप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें अपनी आत्मा भेजिए ताकि हमारे अंदर एक दूसरे को समझने सुनने और सम्मान तथा करुणा के साथ रहने की भावना फिर से जागृत हो। पोप लियो चौदहवें ने युवा दीक्षार्थियों एवं बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे लोगों को याद दिलाया कि हम जन्मजात क्रिश्चियन नहीं होते बल्कि बपतिस्मा के माध्यम से क्रिश्चियन बनते हैं जिसके बाद हम क्रिस्त को धारण करते हैं। पोप लियो ने सोमवार सुबह को रोम में युवाओं की जयंती के अवसर पर युवा फ्रांसीसी दीक्षार्थियों एवं बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे दलों को संबोधित किया और उनके विश्वास की यात्रा और उनके साथ आए धर्माध्यक्षों पुरोहितों और प्रचारकों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। संत पिता का संदेश उस व्यक्तिगत मुलाकात पर केंद्रित था जो ख्रिस्त दीक्षा के मूल में है उन्होंने कहा, आप उस समुदाय के भीतर प्रभु से व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं जो आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने बपतिस्मा को केवल एक संस्कार नहीं बल्कि जीवित ईश्वर पिता पुत्र और पौत्र आत्मा के साथ आजीवन संवाद की शुरुआत बतलाया। उन्होंने आगे कहा, यह देखकर कितनी खुशी होती है कि युवा लोग विश्वास के प्रति समर्पित हो रहे हैं और मसीह और उनके सुसमाचार के मार्गदर्शन में अपने जीवन को अर्थ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बपतिस्मा हमें ईश्वर के महान परिवार का पूर्ण सदस्य बनाता है। गलातियों के नाम संत पौलुस को लिखे पत्र का हवाला देते हुए पोप ने उपस्थित युवाओं को उस गरिमा की याद दिलाई जो अब उनके पास है। उन्होंने कहा, आप सभी जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, आपने मसीह को धारण कर लिया है। उन्होंने कहा कि बपतिस्मा ख्रिस्त को उदासीनता अन्याय और मानव व्यक्ति के वस्तुकरण में देखी जाने वाली प्रचलित मृत्यु की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके विपरीत प्रत्येक विश्वासी को पुनर्जीवित ख्रिस्त की ज्योति सौंपी गई है जिससे ईश्वर के वचन एवं यूखरिस्त द्वारा प्रज्वलित रखना है। इसके बाद पोप लियो ने बपतिस्मा संस्कार के एक विशेष प्रभावशाली पल की ओर संकेत दिया। यह वह क्षण होता है जब हम पास का मोमबत्ती से प्रज्वलित मोमबत्ती ग्रहण करते हैं। यह मृत एवं पुनर्जीवित मसीह का प्रकाश है जिससे हम ईश्वर के वचन को सुनकर और यूखरिस्त में यीशु के साथ हर रोज संवाद करके प्रज्वलित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पोप ने कहा, आप भी पृथ्वी के नमक और जगत के प्रकाश हैं। कलीसिया को आपके विश्वास की सुंदर गवाही की आवश्यकता है। अंत में पोप ने उपस्थित युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे यीशु से संयुक्त रहें और कठिन समय में उन्होंने कहा, आपके हृदय उनमें स्थापित हो जो मार्ग सत्य और जीवन है, जो समस्त शांति आनंद और प्रेम के स्रोत हैं। डिजिटल मिशनरियों एवं कैथोलिक प्रभावशाली लोगों के लिए कार्डिनल तागली की अध्यक्षता में आयोजित ख्रिस्त्याग के अंत में पोप लियो 14वें ने सभी लोगों को एक मानवीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करने की चुनौती दी। अपने प्रवचन में कार्डिनल तागले ने प्रभाव शब्द पर चिंतन किया और बतलाया कि कैथोलिकों एवं प्रभावित करने वाले लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति है और साथ ही हर कोई प्रभावित होता है। उन्होंने कहा, दैनिक जीवन परस्पर जुड़े हुए प्रभावों का एक ताना बाना है। हम लगातार अपने परिवारों पड़ोस स्कूलों और अन्य सामाजिक परिवेशों से प्रभावित रहते हैं। जब जीवन के ये पहलू भ्रष्ट हो जाते हैं तो वे बदले में इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम कौन हैं और हम किस प्रकार का समाज बनाते हैं। इसके अलावा प्रो प्रीफेक्ट ने आगे कहा, जैसे पृथ्वी और पर्यावरण हमें प्रभावित करते हैं वैसे ही हमारी गतिविधियां भी ग्रह को प्रभावित करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, यह जयंती समारोह इस इरादे की जांच का निमंत्रण है जो हमारे समकालीन विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव को बढ़ावा देता है। दुनिया में हम जो बदलाव देखना चाहते हैं वह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करना चुनते हैं और इसके पीछे हमारी क्या मंशा है। कुछ लोग लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्लैकमेल या रिश्वतखोरी का। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए युद्ध बमबारी जबरन भुखमरी का सहारा लेते हैं। कार्डिनल तागले ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पौत्र मिसा के पाठों का सहारा लिया। उन्होंने कहा, हमें कोई मैसेज या ईमेल अटैचमेंट भेजने के बजाय ईश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र भेजा। सुसमाचार संदेश हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने को यीशु के प्रेम से प्रभावित होने दें, जिसके माध्यम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।